ब्रज बर नागर गोकुल रंजन कान गोकुल रंजन कान जसमति नंदन ब्रज बर नागर गोकुल रंजन कान गोकुल रंजन परान धन मदन मनोहर गोपी परान गोपी परान धन मदन मनोहर गोपी परान काली दमन विधान काली दमन जसमति नंदन ब्रज बर नागर गोकुल रंजन कान गोकुल रंजन कान ओ जसमति नंदन अमलहरि नाम अमिय विलास अमलहरि नाम अमलहरि नाम अमिय विलास अमलहरि नाम विपिन पुरंदर नवीन नगर बर विपिन पुरंदर विपिन पुरंदर नवीन नगर बर विपिन पुरंदर बदन सुवासा वंशी बदन सुवासा जसमती नंदन ब्रज बर नागर गोकुल रंजन कान गोकुल रंजन कान जसमति नंदन ब्रज बर नागर गोकुल रंजन कान गोकुल रंजन जन पालन यशुर कुल नाशन ब्रजजन ब्रजजन पालन यशुर कुल नाशन ब्रजजन जय नंद गोधन रखो वाला नंद गोधन रखो वाला गोविंद माधव नवनीत तस कर गोविंद माधव जय जय गोविंद माधव नवनीत तस कर गोविंद सुंदर नंद गोपाल सुंदर नंद गोपाल जसमति नंदन ब्रज बर नागर गोकुल रंजन कान गोकुल रंजन कान जसमति नंदन गोकुल रंजन जमुना तट चर गोपी बसन हर जमुना तट चर जमुना तट चर गोपी बसन हर जमुना तट चर रास रचिता की पामा रास रचिता की पामा शिराधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्रीराधा श्रीराधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्रीराधा भगति विनोद यास्त भगति विनोद यास्त दशमति नंदन रजवर नागर गोकुल रंजन कान गोकुल रंजन कान दशमति नंदन रजवर नागर गोकुल रंजन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण दशमति नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान गोकुल रंजन कान दशमति गोकुल रंजन कान
अंग श्यामलिम छटाभिरहितो मंदिकृतेन्दीवरम जगदंजागुदरोचि संविदधतमपट्टम्बरस्य श्रिया वृंदारण्य निवासिनम हृदि लसद्भ्रामाभिरामोदरम राधास्कंदनिवेशितो जलभुजम् पवित्राभिमुना अपराधलक्ष्यै चित्तस्य कामादितरङ्गम् कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कात्रया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो तं सर्वभूत हृदयम् तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधितं मे मा
दशम स्कंद के पहले अध्याय का चतुर्थ श्लोक आरंभ किया। निवृत्त तरसई उपगीयमाना बहुसधा श्रोत्र मनोभिरामा कौत्तम श्लोक गुणानुवाद कुमान विरज्य पिनाप सुखनाथ कल हमने बतलाया था ये कह उत्तम श्लोक गुणानुवाद उत्तम श्लोक के लिए बतलाया उत्तम श्लोक या उत्तम श्लोक दो उसके अर्थ हैं उत्तम तमह श्लोक उद्गत हैया छे उद्गत हुआ छे तमह जिन में से अर्थात तम भाव जिससे निकला हुआ सात्विक राजसिक तामसिक ये गुण सब जिनके बाहर हैं जिनके अंतर नहीं है ऐसे हैं भगवान विष्णु से लेकर के कृष्ण तक सभी ऐसे जिनमें तामसिक कोई भाव नहीं है राजसिक तामसिक इत्यादि सभी भावों से अतीत ये हैं, कृष्ण और भी अतीत। उनकी प्रभाव वाली जो कथाएं हैं, अमोघ कथाएं हैं, उनका अनुवाद, उनका कीर्तन करने वाले जो हैं, वो भगवत भक्तों के लिए भी उत्तम श्लोक बतलाया गया। उनमें भी वो भी निर्गुण हैं जो भगवान के भक्त हैं, नारद प्रभृति, सुखदेव गोस्वामी इत्यादि, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि, ये सभी ही भी वैसे ही हैं। इन्हें इनके लिए भी कहा जाएगा। इसलिए भक्त और भगवान दोनों का चरित्र का जो गुणगान है वो उत्तम श्लोक गुणानुवाद के अंदर में आता है। भगवान की भी कथा उत्तम श्लोक की भी होगी तो ये भगवत संबंधी होगी, भक्तों से संबंधित। कृष्ण की अकेले कथा नहीं होगी, या तो दास्य भक्त, सख्य भक्त, वात्सल्य भक्त, इनमें से जरूर भक्तों के साथ ही उनकी कथा होगी। अच्छा, इसमें यह बतलाया एक और चीज, श्लोक गुणानुवादात्, श्लोक का जो गुणानुवाद है और उसका श्रवण, ये दोनों से समझो। गुणानुवाद को सुनने वाला भी और उसका वर्णन करने वाला भी। तो ऐसे जो भगवान की और भक्तों की कथाएं हैं और उसमें निवेदित तंसई उपगीयमाना, उसमें जो निवृत्त तरसई माने जिनकी विषयों की तृष्णा निवृत्त हो गई, विषयों की तृष्णा जिनमें नहीं है, रूप रस गंध संसारी इनमें से संपूर्ण रूप से उनकी रुचि नहीं, ऐसे कौन हैं जिनकी रुचि नहीं है? ये दो हो सकते हैं, एक तो मुक्त पुरुष और जीवन मुक्त, दोनों हो सकते हैं। मुक्त में भी बहुत प्रकार के हैं, जो लोग ज्ञान के द्वारा प्रभु की आराधना करते हैं, ज्ञान के नेत्र से वो उनको ब्रह्म के रूप में दर्शन करते हैं और उनसे मुक्ति होने के बाद उन्हें मिल जाते हैं साई जी इत्यादि। और दूसरे होते हैं साई जी मुक्ति नहीं लेकर के कुछ सेवा प्रधान, अपना सुख भी किंतु सेवा प्रधान, वो चार प्रकार की बाकी जो मुक्तियां हैं उसको लेते हैं। अब इनका संसार से अवागमन एकदम से मुक्त हो गए। यहां पर उन इन लोगों के लिए कहा गया है जो उनमें साहित्य को प्राप्त हो गए हैं, नहीं उनके लिए नहीं। क्यों? उपगीयमाना जो गान करने में निरंतर लगे हुए हैं, अभी गान कर रहे हैं, और वो गान कैसा? गान इच्छा करके नहीं, गान ही यहां पर करता है, जैसे रास करता है, कृष्ण और गोपियों को लगा रखा है, नचा रखता है, ऐसे यहां गान ही नचा रहा है जिनको, ऐसे महापुरुष जो हैं जिनको भगवान का गुणानुवाद उनको कभी नचाता है, उठाता है, बैठाता है, रुलाता है, ऐसे महापुरुष कैसे? और एक श्लोक में पीछे बतलाया गया है, ऐसे भक्त निरंतर हरि कथा जिन्हें मुख से अपने आप धारा प्रवाह से निकलती है। क्या है वो श्लोक? तस्मिन महान मुखरिता, मुखरिता माने क्या? अपने आप, इनको प्रयास नहीं करना पड़ता है हरि कथा कहने के लिए, हम लोगों को प्रयास करना पड़ता, हम कहते हैं आज रहने दो हरि कथा, और उनको बिना प्रयास के हरि कथा निरंतर जलप्रपात की भांति निरंतर दिखा दो। इसलिए उपगीयमान माने क्या, जिनके मुख से अपने आप धारा प्रवाह के रूप में वो जो उत्तम श्लोक का गुणानुवाद रूप जो हरि कथा है वो अपने आप हृदय से निकलती रहती है, ऐसे महापुरुषों के द्वारा जो कि निवृत्त तृष्ण है संसार की कोई लालसा भरोसा। एक भगवान का पाठ करता है व्यक्ति, प्रवचन करता है, यदि वो पैसा के लिए करता है प्रतिष्ठा के लिए करता है तो उसका बंद हो जाएगा और बहुत परिश्रम के साथ में करेगा, क्योंकि पैसा के लिए करता है, व्यवसाय के लिए करता है। इसलिए वैसे लोग नहीं, यहां पर निर्वृत्त तृष्ण कहा गया मुक्त जो है, और वो भी मुक्त साधारण नहीं, मुक्तों में भी ज्ञान इत्यादि के द्वारा शारीरिक मुक्ति पाने वाले नहीं, के द्वारा परमात्मा का साक्षात करने वाले नहीं, क्योंकि ये लोग भी गान नहीं करते, भगवान की लीला कथाओं का गायन नहीं करते। गायन कौन करता है, केवल भक्त। इसलिए शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करके और वो मुक्त होकर के भगवत पार्षदत्व लाभ किए हैं। जीवनमुक्त में इनको सुखदेव गोस्वामी जी को कहा जा सकता है, निवृत्त तर सही है, और उधर में मुक्त में नारद प्रभृति जो है परिकर देह को प्राप्त करने वाले, परिकर में भी बहुत से मुक्त हैं, मुक्त भी में जो परिकर है हमें बहुत तरह के, नारायण के परिकर, राम के परिकर, द्वारकाधीश के परिकर, मथुरेश कृष्ण के परिकर, कृष्ण के परिकर, कृष्ण में भी दासरस के परिकर, कृष्ण के भी सखरस के परिकर, कृष्ण के भी वात्सल्यरस के परिकर, कृष्ण के भी मधुरस के परिकर, मधुरस के परिकर भी स्वकिया और भरतिया, परिकिया में भी बहुत तरह के। तो इस तरह से यहां पर परिकरत्व इतने में भी कौन सा परिकर सबसे श्रेष्ठ होगा, ब्रज रस का, मधुर रस का, गोपियों के अनुगत ऐसा परिकर जो है वो यदि गान करें इस लीला को तब तो क्या बात है। ये लोग कभी भी गान को नहीं छोड़ते। तो उपगीयमान और भौषधात, बहुषधात माने क्या हो, दूसरा बतलाया बहुषधात, निरंतर कहने वाले की तो बात नहीं आ रही। निरंतर अपने आप जो हरिकथा होगी वो वहां पर नहीं, दूसरा विशेषण बतलाया भव सुधार, भव की औषधि, भव की औषध किसके लिए बतलाया गया, एक आदमी को रोग हुआ, इतना रोग अधिक प्रचंड हो गया है कि उसको होश नहीं रहा, तो वो कहेगा कि मैं रोगी हूं और हमको दवा दीजिए, इसलिए वो नहीं। जिसको अभी होश है, रोग है और होश भी है, वो कहा कि हमको ये कष्ट हो रहा है, डॉक्टर को बुला दो, तो इसको होश है। ऐसे ही इस संसार में भव रोग एक महाव्याधि है, पुनः पुनः जगत में आना और अनंत काल से ही, अनादि काल से इस भव रोग में ऐसे घिरे हुए हैं, पता नहीं है कि हमको रोग है कि नहीं। हम लोग को भी सुन रखा है किंतु भौरों का कष्ट भी अनुभव नहीं हो रहा है। अभी जवानी है, कुछ शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, खाने की हजम करने की शक्ति है, इसलिए मालूम नहीं है। किंतु यदि कोई साधु मिल जाए, साधु मैंने वैष्णव मिले, और उनका संग हो, कुछ हरि कथा दें, रोग कुछ उपशम हो जाएगा, होश में आएंगे, जब कष्ट अनुभव करेंगे तो कहेंगे भाई हमको औषधि दी। इसलिए इनको कहते हैं मुमुक्षु, रोग से मुक्ति की इच्छा रखने वाले। ये मुक्त नहीं है किंतु समझते हैं कि हमको रोग है और हमको किसी तरह से रोग की औषधि चाहिए। ये लोग सच्चे सच्चे औषधि का की इच्छा करेंगे। और जिनको होश नहीं है, इसका मतलब उनको जो दिया जाता है वो खाते नहीं है, सेवन नहीं करते नहीं? जो साधन भजन है उनके लिए कहा जाता है जे ये करो, ठीक विपरीत करते हैं, होश नहीं है, एकदम डूबे हुए हैं। काम क्रोध दासैया तार लाती खाए, भ्रमिते भ्रमिते जदु साधु बद्य। तो साधु बद्य पाने से उसको रोग का थोड़ा सा उपशम कर देंगे, अब तक फिर हमको अनुभूति होगी कष्ट की, आ कोटि कोटि जन्मों से हम पड़े हुए हैं, ये मनुष्य जीवन है जिसमें हम कर सकते हैं, तो अनुताप करता है और अनुताप करके बद्य की दवा का सेवन करता है। इसलिए रोग से मुक्ति पाए, रोग है आना जाना ये जगत में और त्रिताप द्वारा दब देना। तो ऐसे लोग भी बहुत प्रकार के हैं, एक मुमुक्षु होता है ज्ञानी, एक मुमुक्षु होता है योगी, एक मुमुक्षु होता है भक्तिमान, ये तीन प्रकार के मुमुक्षु भी हैं और तो अनंत प्रकार के हैं, इसमें तीन प्रधान हैं। तीनों प्रकार के लिए कहा गया, भगवान की कथा तीनों के लिए औषधि है, किंतु विशेष करके जो भक्त लोग हैं रोग से निवृत्ति चाहते हैं वो लोग भी मुमुक्षु हैं, किंतु उन लोगों से कुछ श्रेष्ठ हैं। अब तीसरे हैं कौन, श्रोत्री मनोभिरामात, जिनको कानों से और मन से अच्छा लगता है, भगवान की कथा अच्छी लगती है। यहां पर उपलक्षण के लिए ये दो कहा गया, बाकी रूप रस गंध शब्द स्पर्श सबसे है। विषयी लोग होते हैं, विषय में डूबे रहते हैं, सब समय विषय में डूबे, भगवान की भक्ति भी करेंगे तो वो विषय में ही, विषयों के लिए करेंगे, शुद्ध रूप में भक्ति के लिए नहीं करेंगे। इसके लिए वो क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं और संसारिक सुखों को रूप रस गंध शब्द स्पर्श को जाते हैं भोग करना, इनको कहते हैं विषय। जैसे महाराज सूरत और सब लोग हैं, महाराज हरिश्चंद्र हैं, शिवी हैं, दधीची हैं, ये लोग दूसरों के उपकार के द्वारा ये लोग ये दूसरे जन्म में पाएंगे, इसके लिए ये प्रयत्न करते हैं, ये लोग विषयी हैं। अच्छा, जो लोग ऐसे कुछ लोग हैं विषयों के लिए, विषय को भोग करने के लिए वैदिक क्रियाओं का, वैदिक अनुष्ठानों का और वेद विधियों का उल्लंघन कर और धर्म का आश्रय करके विषय का भोग करना चाहते हैं, ऐसे भी तो है ना, चोरी से, झूठ बोल करके, दूसरों को ठग करके, प्रवंचना करके, माता पिता को, गुरुजनों को मारकर, उनका विरोधी कर्म करके, अनाप शनाप उपाय से विषयों का भोग करना है। आजकल ऐसा हजारों हो रहा है, जो दूसरों का, अपने भाई का मर्डर कर दिया, किस लिए, उसकी संपत्ति हमको मिले। माता पिता को मर्डर कर दिया, गुरु को अपना मर्डर कर दिया, लोगों की कमी नहीं। इन लोगों को विषयी कहा, किस लिए? विषयों का भोग करने के लिए। इनको विषयी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? विषयी विषय के लिए तो किया है, नहीं ये कुविषयी है, विषयी नहीं कुविषयी है। इनको नरक भोग करना पड़ेगा, इस लोक में भी सुख नहीं शांति नहीं पर जगत में भी नहीं, इसलिए इससे बचना चाहिए। झूठ चोरी बेईमानी काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य सबसे बचना चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति है उनको ही यहां पर कहा गया बिना पशु नाथ, ये लोग भगवान की कथा नहीं सुन सकते, सुनने में भी कार्य नहीं करेगा। बाकी जो हैं नित्य मुक्त मुक्त जीवन मुक्त ज्ञानी कर्मी योगी, विषयी को भी मिल जाएगी ये कथा, अच्छी लगेगी, विषयी को भी अच्छी लगेगी। किंतु इन दुष्टों को बिना पशु ना, जो अपने सुख के लिए पशुओं की हिंसा करते हैं और बलि देते हैं ना? जो गुरु से प्रवंचना करता है, झूठ बोलता है, गुरु की हत्या करता है, विरोध करता है, वैष्णव का विरोध करता है, भगवान के नाम पर विषयों का भोग करता है, हत्या लुंठन ये सब काम करता है विषय के भोग के लिए, उनकी क्या गति होगी? उनकी हरिकथा में रुचि नहीं होगी। इनके अतिरिक्त बाकी सबका हो जाएगा, इनका विरज्जेत बिना कुमान विरज्जेत बिना पशु, इन लोगों को हरिकथा में रुचि नहीं। कुमान माने यहां पर कुमान शब्द है मनुष्य मात्र को, और पुरुष है ना कुमान पुल्लिंग, किंतु जब और व्यापक रूप में अर्थ लेंगे तो इसका हो जाएगा जीव मात्र, देहधारी जीव। देहधारी जीवों में पशुओं को भी हो सकता है, पशु लोग भी सुनते हैं, किंतु ये बिना पशु ना ये लोग नहीं, इनमें सुख में रुचि होगी, ये इससे भी बदतर है। इसलिए इन सब से बचने की चेष्टा करनी चाहिए, साधन का ये प्रधान अंग होना चाहिए, प्राथमिक अवस्था में। कुमान कुमान मैंने बतला रहे हैं पुरुष, कुमान मैंने होता है पुरुष, जो लोग पुरुष शरीर धारण किए हैं, पशु लोगों की इसमें साधारण तरह से रुचि नहीं है। लाख प्रकार के पशु प्राणी पक्षी हैं, मनुष्य शरीर धारण करने वाले को ही ये सहज सुलभ ये है, इसी जन्म में केवल अधिकतर होता है। हो सकता है कोई महापुरुष हो, महाशक्तिशाली पुरुष हो, अपने कीर्तन से अपने संबंध से देख करके उनमें भक्ति का संचार कर सकता है प्रत्येक जीव मात्र, किंतु सरल सहज रूप में उन्हीं लोगों के लिए हो जो पुरुष शरीर धारण किए, उनमें भी जो ऐसे विषयी हैं उनको नहीं होगा। इसलिए पुरुष शरीर धारण करने वाले में भी विद्वान होने पर भी नहीं होगा, पुरुष धारण किया साधु का संग प्राप्त हुआ, ऐसा जी गुरु भी प्राप्त हुए, और ऐसी कथी में रुचि नहीं हुई तो समझे जो वो भी पशुनाथ है। और क्या कहते वो पुरुष, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती था या किसी की टीका में, जी गोस्वामी की टीका में, पुरुष शरीर धारण करके हरि कथा कहता भी है या सुनता भी है किंतु पैसे के लिए, तो क्या होगा वो, उसकी रुचि जहां तक पैसा मिला तब तो कहेगा सुनेगा, जब पैसा नहीं मिलेगा तो
उनको ही पशुनाथ मिल जाएगा।
और क्या, जब चला गया छोड़ करके, वो लोग भी ऐसे हैं। इसलिए कारोबार का व्यस्त ये नहीं बनाना चाहिए बिजनेस, हरि नाम, हरि कथा इत्यादि भगवत भक्ति का प्रेम का विरोधी है। इसलिए बिना पशु, पशु को मारने वाला, अपने सुख के लिए, उनको खाने के लिए, यज्ञ के लिए, अपने पर्श, अपने इस जन्म के बाद में स्वर्ग इत्यादि पाने के लिए पशुओं की जो सूरत की तरफ में हत्या करते हैं, वो लोग कथा में सुनने में रुचि नहीं हुई। और उस जन्म के बाद भी परलोक में भी उनकी दुर्गति होगी। इसलिए एक कथा की अवतारणा टीकाकारों ने की है। विक्रमादित्य नाम के एक राजा हो गए हैं, विक्रमादित्य नाम के एक राजा हो, वो बड़े प्रजावत्सल थे। रात में वेश बना करके साधारण, कभी तेली तमोली, कभी गृहस्थ, कभी बूढ़े, कभी कुछ, और राज्य में प्रजाओं का ये सब देखने के लिए निकल जाते। तो किसी बैताल से उनका, भूत बैताल से उनका कभी संग हो गया, तो उनसे उसने प्रश्न किया था कुछ, और उसका इन्होंने उत्तर दिया, तब ये प्राण से बचे, नहीं तो उनको वो मार डालता। तो उसने इनसे कुछ प्रश्न किया था, वो प्रश्न किया था, प्रश्न का एक उत्तर दो। प्रश्न है ये, यहां है वहां नहीं है, वहां नहीं, वहां है यहां नहीं है, यहां भी है वहां भी है, यहां भी नहीं है वहां भी नहीं। इसका एक प्रश्न का उत्तर हमको दो। बैताल ने उसे पूछा, यदि नहीं बताएगा तुम्हें जान से मार डालेंगे, और यदि तुम उसका उत्तर दे देगा तो हम तुम्हारे गुलाम सेवक बन जाएंगे, जब तुमको जो कुछ कहेगा वही काम हम कर देंगे अलक्षित रूप में। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा मैं इस प्रश्न का उत्तर देता हूं, किंतु तुम समझ लेना, आज तुम्हारे समझ में नहीं आएगी तुम सदा के लिए हमारा गुलाम बन जाएगा। यह करके उन्होंने कहा, तुम समझो, राजपुत्र चिरंजीव, अच्छा राजपुत्रम चिरंजीव, ठहरो ठहरो ठहरो, आगे भग भग कर रहे हैं, मां जीव ऋषि पुत्र का, अच्छा जीवो आमर साधो त्यागो मां जीव मामर। इसका अर्थ यह है, हे राजपुत्र, राजपुत्र तुम चिर जीवित रहो, और ऋषि पुत्र तुम मां जीव, तुम जीवो मत, ऋषि पुत्र जीवो मही, अभी तुम मर जाओ, और जीव वा मर साधु, जो साधु है वैष्णव है, तुम जीवो अथवा मरो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए जीवन और मरण दोनों एक ही बात है। और व्याधो मां जीव मां मर, और व्याध के लिए कहते हैं कि जीवो भी मत और मरो भी मत, दोनों उसके लिए। इसका अर्थ क्या है, अब इसको वो समझ करके उनके चरणों में गिर गया। अब गिर करके बोले, अब से मैं सदा के लिए तुम्हारा नौकर हो गया, तुम जो कहोगे मैं उसको पूरा कर दूंगा। तब ये राजा उसको समझा रहे हैं, जो राजपुत्र है पूर्व जन्म के कर्मों के फल से राजा का पुत्र हुआ है, इस जन्म के कर्म से नहीं। वो जितने दिन तक राजपुत्र रहेगा वो खूब सुख से भोगेगा, मर जाने के बाद में उसका क्या होगा, क्योंकि इस जन्म में अच्छा कर्म नहीं किया इसलिए अगले जन्म में वो नहीं होगा, इसलिए जब तक वो जीवित है तभी तक उसका पीछे वो मर जाएगा, खत्म हो गया। और इसलिए उसका सुख इसी काल के लिए है, इसी जन्म के लिए। ऋषि पुत्र ऋषि का लड़का है, वो नाना विधि तरह से तपस्या का अनुष्ठान इस जन्म में करता है, इस जन्म में कोई सुख नहीं भोगता, पर तरह का क्लेश स्वीकार करके तपस्या कर रहा है सारा जीवन। तो उसके लिए कहते हैं मां जीव ऋषि पुत्र का, तुम्हारे लिए अगले जन्म में सुख की एकदम सीरियल रूप से रखा है सुख, सब सुख। इस जगत में जितना दिन है तभी तक तुमको साधन का दुख है, और यदि तुम मर जाएगा तो उस जगत में जाकर के स्वर्ग का सुख वो करेगा, इसलिए तुमको अब इस जगत में अधिक रहना नहीं, तुमको चला जाना ही अच्छा है, वहां पर सुख भोगेगा। और जीव बामर साधु जो वैष्णव है ठाकुर जी को अच्छी अच्छी तरह से भोग देता है महाप्रसाद, और उसका प्रसाद पाता है, और नित्य करके कृष्ण नाम का गुणगान करता है, और जहां जाता है वहीं पर उसका कीर्तन और भाव और हरि कथा सुन करके लोग उसके चरणों में गिर करके कृष्ण प्रतिष्ठा देते हैं, और अच्छी अच्छी चीजें उसको भगवान का प्रसाद उसको देते हैं। तो इस जीवन में भी सुखी है, और यदि जाएगा तो उसके लिए भगवत पार्षद होकर के जाएगा, इसलिए वहां पर भी सुख है। इसलिए तुम जीवो था मरो कोई चिंता, तुम जीवित भी रहो तब इस जगत में सुख है, और उस जगत में सुख है। और क्या रह गया ब्यार, मां जीवो मामर, तुम जीवित भी नहीं रहो मरो भगवत, क्योंकि तुम्हारे लिए इस जगत में भी सुख नहीं है, मर जाओ तो दुख दूर हो जाएगा, और उस जगत में जाएगा तो भी दुख नहीं है, सुख नहीं है, इसलिए तुम मरो भी मत, दोनों उसके लिए, इस जगत में भी सुख नहीं परलोक में सुख। इसका क्या तात्पर्य अब इसमें ले आओ, पुण्य के बल से इस जन्म में हमने लिया जन्म, पूर्व जन्म की सुकृति कुछ थी, हम लोग साधु संग मिला, भजन में कुछ प्रवृत्ति हुई, घर के प्रति कुछ विकर्षण हुआ, छोड़ करके आए भजन कर, किंतु यदि भजन नहीं किया साधु संग गुरु इत्यादि को कभी, तो क्या होगा, आत्महा आत्मघाती होंगे। इसलिए सबसे सरल हो करके बस इस जीवन में भगवान का भजन करेंगे, और सबसे बड़ी बात है जिसके द्वारा हमारी बुद्धि आई उस वैष्णव संघ को कदापि नहीं छोड़ेंगे, वैष्णव का संघ कदापि नहीं छोड़ेंगे, यदि छोड़ दिया तो रसातल में चले। इसलिए ये कह रहे हैं पुण्य के बल से यहां पर सुख ऐश्वर्य के अधिकारी होकर उसी में मत होकर के गोविंद के जो विमुख हो गए उनके लिए यहां पर तो कुछ कर्मों का फल हो रहा है भैया, वहां पर नरक में भोग करना पड़ेगा, इसलिए भूलो मत वहां पर सुख नहीं है। जो निबिड़ अरण्य माने जंगल में नदी के किनारे पर्वत की गुहा में रह करके खूब तपस्या कर रहे हैं उनके लिए यहां पर तो कुछ नहीं मालूम पड़ता, किंतु पर जगत में कुछ है। गोविंद की चरण चिंता करने वाले भजन में रहने वाला जो व्यक्ति है यहां भी है। प्रहलाद महाराज ने और ध्रुव ने यहां पर भोग किया ना, कितना बड़ा भारी राज्य, पांडवों ने यहां पर भी हाथ में, और वो वहां भी लड्डू भगवान के परिकर के रूप में दोनों जगह। गोविंद लीला के कथन श्रवण और कीर्तन महाप्रसाद भोजन मंदिर मार्जन विग्रह सेवन श्री गोविंद भक्तों के संग का सुख का आस्वादन करना पर्व और यात्रा में। अभी हम लोगों का कृष्ण का जन्माष्टमी आ रही है, देखिए जो सज रहा है, तरह तरह की लीलाएं, क्या क्या सब होगा, नगर संघ कीर्तन होगा, कितने प्रेम के साथ उछलेंगे गाएंगे कीर्तन करेंगे, और सब जगह कहीं शरबत मिलेगा कीर्तन करते हैं, कहीं गुलाब की ऐसे छिड़क रहे हैं, सब लोग कहा वाह वाह देखो तो कैसे ये कर रहे हैं, और ठाकुर जी का जो कुछ भोग लगेगा वो आप लोगों को भी मिल जाएगा, बतलाओ लोग कोई पैर छुएंगे, कोई कुछ करेंगे। इस जगत में भी है और परकाल में सुखपूर्वक अपना भक्ति में भगवान के परिकर होकर के जीवन लाभ करेंगे। और जो लोग परहिंसा, परपीड़न, इससे भी अधिक भक्तों के प्रति अनाचार, चार वो छह प्रकार का हिंसा जो आश्रय करते की कर सकती है, सब समय खेला। धन उपार्जन में वैराग्य वेश लेकर के धन उपार्जन में जो लगे हुए हैं हम लोग, इस जीवन में भी क्लेश और उधर भक्ति गई हाथ से निकल करके उस जीवन में। इसी को उन्होंने इस तरह से बतलाया। इसमें जो व्याध वाला जो चरित्र है बिना पशु घनाथ, इसके लिए ये व्याख्या कर, तुम बचो भी नहीं मरो भी नहीं, तो इस लोक में भी तुम्हारा लिए कुछ नहीं है। ऐसे लोग जो हैं भगवान की कथा से विरत होते हैं और बाकी जितने हैं भगवान की कथा से, चाहे वो विषयी हो, ये विषयी भी नहीं है। अच्छा, और रहा भक्ति की बात, भक्ति में यहां पर बतलाया निवृत्त तरसई, किंतु उसके साथ लगा दिया उपगीयमाना। निवृत्त तरसई कहने से जीवन मुक्त अथवा मुक्त हो जाते सायुज्य वाले, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उनको पाने वाले, किंतु उनको कथा में रुचि नहीं है, वो लोग हरि कथा का गान नहीं करते, इसलिए यहां पर भक्ति वाले के लिए कहा। इसलिए चार अधिकारी उसने बतलाया, कौन कौन, निवृत्त तर्स मुक्त उसके द्वारा जो गान किया जाता है, मुमुक्षु विषय, ये तीन का बतलाया, और एक नहीं बतलाए वो है चतुर्थ, क्या है, संसार में है दुख भी है किंतु वो संसार के दुखों को भी दूर करना नहीं चाहते हैं। स्थाने स्थिता तनुवांग मनोभ, जिस रूप में है दुख कष्ट को भी भोग रहे हैं, सब कुछ है, कहते प्रभु हमको ये सुख की भी जरूरत नहीं है, हमको कुछ जरूरत नहीं है, मैं किसी प्रकार से आपका भजन करते हुए आपके चरणों को मैं पा सकूं, महापुरुषों के चरण की सेवा को हम प्राप्त कर सके, बस यही हमको चाहिए। अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकुलेन कृष्ण, ये भक्ति का अधिकारी, इनमें से सबसे बड़े अधिकारी यही अंतिम वाला, ये सनातन गोस्वामी जी की अपनी टीका में इन्होंने बताया, वैष्णव दोषी में। और सबका आप करी करी अर्थ बतला दिया। पिता महो में समरे अमरंजय देव व्रताद पतिरथस्ति मिनिंगल दुरतयं कौरव सैन्य सागरम कृतात्म तरण वत्स पदम स्मजत्लवा। ये इसलिए कहें जब प्रभु अब अपनी हरि कथा जो बंद कर दिया, चुप हो गए, इसलिए ऐसा मत समझिए कि मैं हरि कथा सुनना नहीं चाहता, हमारा पेट भर गया, जैसे कल उदाहरण दिया था ना, भोजन करने के बाद में खाने तो छोड़ देते हैं, तो वैसे मैं हरि कथा को सुनकर के तृप्त हो गया और नहीं सुनना चाहता हूं, ऐसा मत समझिए। वो तो केवल पशु की जो हनन करता है, पशु घनात और एक अपशु घनात, पशुघ्नात माने क्या, पशुओं की हिंसा करने वाला, और दूसरा अपशुघ्नात माने आत्महत्या करने वाला, क्यों अपशुघ्नात है ना, इसमें दो भाग कर दो, अप सुक, सुख से सुख माने शोक करना, शोक करना माने क्या, अप सुख माने जो वो संसार में जावा अगर मैंने जो सब समय नित्य भी कर रहा है उसके लिए शोक नहीं करता, विचार नहीं करता, चिंता नहीं करता, वो उसी में लगा हुआ है संसार में, इसलिए अपशुक शोक माने सोचना, ये विचार नहीं करता कि हमारा हमारी क्या गति होगी, कोटि कोटि जन्म हमारे चले गए पुरता। ऐसे लोग जो है ये आत्मघाती कहलाते हैं, मनुष्य साथ शरीर पाकर के गुरु रूपी कर्णधार पाकर के भगवान की कृपा रूपी भगवत भक्तों का संग अनुकूल ये बारी है, इतना होने पर भी भव सागर से तत्क्षणात् तर नहीं गए, ये लोग हैं आत्महत्या करने वाले, वही बिना वो ब्याज के अपेक्षा में, वही ब्याज एक ब्याज होता है जो पशुओं को मारता है, और ये उससे भी अधिक भयंकर आत्मघाती अपने कर क्यों भगवान का भजन नहीं कर पाए, ऐसे लोग ही बस हरिकथा से विगत कर सकते हैं। दूसरा बस आज यहीं तक वंचा कल्प, कल इसका अर्थ बतलाएं।
कल्पतरुभ्यश्च कृपासंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णे गौभक्ति हे कृष्ण करुणासिन्धु बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि ते। हा देवी का तू भर गद गद यात्र अंग श्यामलिम छटाभिरभित मंदे कृतिवर जटं जुदरोच सांग विदतम पट्टंबर श्रिय बृंदानंद निवासी मृदिल दशम स्कंद प्रथम अध्याय। सबसे पहले सब ब्रह्मचारी लोग मठवासी हैं, नगर संकीर्तन अभी तक बिजली का डेकोरेशन नहीं हुआ और इन लोगों का काम आज समाप्त हो गया। उपगिनियामाना श्लोक की व्याख्या की, उसमें केवल यही कहा कोई भी व्यक्ति इससे जीव मात्र कृष्ण की लीला कथाओं से विरक्त नहीं होगा, जरूर उसका श्रवण करेगा किंतु बिना पशु घुना, बिना पशु घुना उमान विरजे बिना पशु घुना। वही जो मनुष्य जन्म लेकर के स्त्री भी नहीं, स्त्रियों में परतंत्रता देखी जाती है बहुत से विषयों में, जैसे रूप राधनाथ निकल गए और 6 दिन की 8 दिन 10 दिन 15 दिन एकदम चलते चलते जंगल के रास्ते से पूरी पहुंचे, महिलाओं के लिए जरा कठिन है, एक एक पेड़ के नीचे उन लोगों को रहना जरा संभव नहीं है, कुछ परतंत्रता उनके घर में है। किंतु उमान पुरुष को तो सब प्रकार से स्वतंत्र बनाया है, इसलिए कोई भी पुरुष पुरुष जन्म लेकर के साधुओं का संग पा करके इससे कौन ऐसे व्यक्ति है जो इससे रहेगा, हरि कथा का अनादर करके सुनेगा नहीं, इसलिए मैं क्यों नहीं सुनूंगा, मैं जरूर सुनूंगा, इसलिए आप हरि कथा। आप दूसरा पुरुष से बतलाया मन माने जीव मात्र, स्त्री पुरुष सबके लिए। यदि दृढ़ निष्ठा है तो महिलाएं भी इसके लिए कर सकते हैं जो पुरुष कर सकता है, इसलिए जीव मात्र के लिए। केवल यहां पर पुरुष स्त्री के लिए ही नहीं, जीव मात्र के लिए, पशु पक्षी कीट पतंग तक के लिए कहा। सभी लोग भगवान की कथाओं से कोई भी विरक्त नहीं होना चाहिए। उसमें कल उदाहरण दिया है पशुओं के लिए, पशु घनाती के लिए, आत्मघाती और पशु पशु पशुघाती के लिए वो दिया। एक जो यहां नहीं है वहां है, जो वहां नहीं है यहां है, जो यहां भी नहीं है वहां भी नहीं है, यहां भी वहां भी, जीवा या मर। यस, तो किसी ऐसे बहुत से लोग हैं इसमें जिनके समझ में नहीं आया जी किस लिए ये कहा, किसके लिए ये कहा, बतलाओ तो निताई प्रभु किसके लिए ये? जो आत्मघाती हैं वे सबसे बड़े आत्म, एक पशुघाती हैं, ब्याज बहेलिया ये लोग इसी में लगे रहते हैं। यहां तक अपने स्वार्थ के लिए ये लोग पशुओं की हत्या करते हैं, पशु खाते हैं, पशु दूसरों को बेचते हैं काट करके मांस मछली, ये लोग पशुघाती। और आत्मघाती कौन है? जो अपने परमार्थ की कोई वैल्यू नहीं देते, नहीं समझते, मनुष्य जीवन पाकर के साधुओं का संग पाकर के भी अवहेला पूर्वक उसको नष्ट कर देते हैं और भगवान का भजन नहीं करते, ये लोग हैं आत्मघाती। इसलिए आत्मघाती व्यक्ति के अतिरिक्त सभी मन से हरि कथाओं का संग। और तब मैं इसे कैसे अछूता रह जाऊंगा? क्यों? अरे मैं तो ऐसे वंश में उत्पन्न हुआ हूं जिनके संबंध में ये कथाएं हैं। तुम्हारी मैया ना दादी, माँ मैया ना दादी सुभद्रा देवी, सुभद्रा देवी के से मैं इस वंश में आया हूं। और ये सुभद्रा जी के भाई हैं कृष्ण, इसलिए डायरेक्ट उनके साथ में हमारा हम लोगों का संबंध है। इसलिए इनकी कथाओं से कैसे विरत होऊंगा? हम कृष्ण हमारे कुल देवता हैं, कुल देवता और आराध्य हैं, फिर उनकी कथा क्यों नहीं हम सुनेंगे? जरूर हम सुनेंगे। इसलिए आप पुनः कृष्ण की विस्तार पूर्वक जो लीलाएं हैं उनका वर्णन करें। इसलिए प्रथम अवस्था में जितने प्रकार के साधन हैं उन सब साधनों में श्रवण साधन ही सबसे श्रेष्ठ है। जितना ही अधिक श्रवण होगा उतना ही कीर्तन अधिक होगा, हरि नाम में उतने ही श्रद्धा होगा। एक बात मैं भूल जाऊंगा इसलिए फिर बतला रहा हूं बीच में। आजकल आंख का रोग आ रहा है, बड़ी तेजी के साथ में फैल रहा है, संक्रामक, सबकी आंखें लाल हो रही हैं, करीब करीब आंख आंख आ रही है सबकी। पितामहा में समरे अमरन जय देवव्रताद्या अतिरथई स्तिमिंगल दुरत्या कौरव सैन्य सागरम पितात्म तरण बस पदम स्म जत पल्लवा। तो ये कथाएं लीला कथाएं जो हैं परम दिव्यवती, डायरेक्ट उनसे हमारा संबंध है। पितामहा में, पितामह में बहुवचन, इनके पितामह है अर्जुन। अब यहां पर पितामह बहुवचन में पांचों पांडवों के लिए करें। ये समरे अमरंजय, समर में देवताओं को भी जय करने वाले देवव्रत भीष्म पितामह आदि द्रोण कर्ण जयद्रथ द्रोणी अश्वत्थामा कृपाचार्य इत्यादि ये अतिरथी हैं। एक होता है रथी, रथी अधिरथी महारथी, और फिर होता है अतिरथी अतिरथी। तीन दो 300 रथियों को, रथ पर चढ़ करके युद्ध करने वालों को कंट्रोल करता है और उसे अकेले लड़ सकता है, वो तो रथी है। जो हजारों रथियों के साथ में, रथ वालों के साथ में, धनुर्धारियों के साथ में सबको कंट्रोल करके सबको युद्ध में पराजित कर सकता है, वो महारथी है। जो करोड़ों करोड़ों लोगों से कंट्रोल करके उनसे युद्ध करने उनको भी विजय कर सकता है, ये अतिरथी है। तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, द्रोण माने द्रोणी अश्वत्थामा, जयद्रथ, इस कर्ण, ये इस कोटि में आते हैं, अतिरथी हैं। ये कैसे हैं? जैसे समुद्र में तिमिंगिलई सैन्य सागरम, सैन्य रूपी सागर है, जैसे सागर में बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, किसी किसी मछली के लिए तो बतलाया गया है सैकड़ों मील लंबी चौड़ी होती है, फैल मछली को भी वो खा जाएंगे, ऐसी मछलियां जहाज को भी पलट देंगी, ऐसी ऐसी सब है, और सब छोटी बड़ी सब मछलियां कच्छप सबको वो खा जाते हैं, ऐसी ऐसी। तो वैसे ये कौन है? देवव्रत, जिनका व्रत कैसा है, देता हूं जैसा व्रत है, इसी व्रत के बदले पिता की सेवा की और विवाह शादी नहीं की, इच्छा मृत्यु इनको हो गई, मर नहीं सकते आप, जब इच्छा करेंगे तभी मरेंगे, तो बतला उनको कौन हराएगा, और भी चाहेंगे तो हरा लेंगे इनको, नहीं हो सकता, कोई भी इनको युद्ध में नहीं परास्त कर सकता है। इन्होंने प्रतिज्ञा की एक दिन के अंदर में मैं 10,000 रथियों को मारूंगा, महारथियों को, बतलाओ ऐसे ऐसे भी 10 दिन लड़ते ना तो क्या हो जाता, ये सबको ये समाप्त कर देते। कृष्ण ने देखा तो ये अकेले ही सबको समाप्त कर देंगे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की अर्जुन को कल मारूंगा, दुर्योधन को नहीं मरने दूंगा, कैसे कैसे कर करके ये भीष्म पितामह मारे गए। ये मरने वाले नहीं थे, क्यों नहीं मरने वाले हैं? उन्होंने कहा कि पिता के लिए मैं कभी शादी नहीं करूंगा, राज्य का अधिकारी नहीं बनूंगा, पिताजी जिस लड़की से शादी कर रहे हैं उसी के लड़की का जो लड़का उत्पन्न है वही राज्य का अधिकारी होगा, उसके पिता ने ऐसा ही कहा था, किसके? शांतनु के ससुर ने, ससुर माने एक धीवर था, अजय हम इस लड़की की शादी करेंगे उसी स्थिति में इसके गर्भ से पैदा होगा। उन्होंने कहा जी नहीं, मुझको जरूरत है, मैंने शादी नहीं करूंगा, घर में आकर के मुख लटका दिया राजा ने, शांतनु ने, पिताजी वो पिताजी को ऐसा दे करके भीष्म पितामह उसमें ब्रह्मचारी थे, क्या नाम?
देवव्रत।
उन्होंने कहा जी पिताजी आज इस प्रकार से सोच में क्यों हैं? तो इस उन्होंने बतलाया नहीं, तो उनका मंत्री था वो बतलाया जी, इसलिए एक लड़की के साथ में शादी करना चाहते थे, और लड़की का पिता कहता है जो उसी के साथ में शादी लूंगा जिससे इसका लड़का ही राज्य। तो उन्होंने प्रतिज्ञा की आज से मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, मैं खुद उसका उत्तराधिकारी उत्तराधिकार नहीं होऊंगा, और हमको कोई संतानी नहीं होगा जिस पर आज पर बैठे, इसलिए उसी का लड़का हूं। उसी समय में उसके पिताजी ने कहा कि यदि मैंने कुछ धर्म इत्यादि किया है तो तुमको इच्छा मृत्यु हो, तुम इच्छा करेगा तो मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा, बस ऐसा हो गया, मर नहीं सकते थे। उन्होंने अपने गुरु परशुराम को भी हराया, परशुराम जी कैसे, जिन्होंने क्षत्रियों को 21 बार निक्षत्रिय किया, उन्होंने कहा जी उस लड़की से शादी कर लो, उन्होंने कहा जी मैं नहीं करूंगा, तो तुम जीत करके क्यों लाया, तो अपने लिए नहीं उसके उसके लिए क्यों किया तुमने, तुम अन्याय कर रहे हो, अन्याय कर रहा हूं ये बात तो ठीक है, किंतु मैं पिताजी की आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता,
और दूसरी स्थिति होती तो मैं कर लेता। तो उन्होंने कहा जैसे यदि नहीं मानेगा तो हमसे युद्ध करो, ये तो बहुत अच्छा हो गया, बस उनको एक रास्ता खुल गया, अच्छा तो युद्ध कर लिया। बस युद्ध हुआ, उसमें कितने दिन, 40 दिन या कितना दिन तक युद्ध होता रहा, ये हारे नहीं। इसमें ब्रह्मा इत्यादि देवता लोग आकर के मेट मिटाव करता है, जैसे अरे आपका शिष्य आपका तो लड़का है, लड़के से हार जाने में सुलहनामा करने में कोई भी बात नहीं, अंत में इनको झुक करके सुलहनामा। ऐसे ये महाबली है, परशुराम जी से भी नहीं हारे, जो भगवान के अवतार है इनको कौन हराएगा। किंतु कृष्ण के चरणों का कृत्वातरण अतरण, कृष्ण के चरणों को नौका बना लिया और उसकी कृपा से स्म जत पल्लवा वत्स पदम, इस महासमर को बछड़े का खुर में जैसा पानी होता है उसको वो पार। ऐ सोमत, इतनी कहानी में भी नींद आती है। दूसरी बात, द्रोणाचार्य को लो, द्रोणाचार्य उस समय के सबसे बड़े धनुर्धर थे, कौरव पांडवों के लड़के खेल रहे थे, उनका गेंद एक गंभीर कुएं में गिर पड़ा, बच्चे सब कह रहे थे जी भाई कुआं में ये गिर गया, ये कैसे गेंद आए, अब निकालने की कोई भी सूरत नहीं थी। उसी रास्ते से द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण दुबला पतला जा रहा था, तो जब देखा जी भीष्म पितामह इत्यादि सभी उसमें हैं और चेष्टा कर रहे हैं और गेंद नहीं निकल रहा, उनका उस ब्राह्मण ने कहा जो मैं निकाल दूं, तब तो जाओ जाओ रास्ते में, इतने बड़े बड़े ही ये लोग हैं निकाल नहीं पाते, तुम निकाल देगा। तो उसने एक कोई सीख ली और उसका धनुष बना करके
उसका
अरे हाँ वही हुआ है, एक ही बात उसका ऐसा बाण मारा बस और निकल करके गिर चला आया। बाण में कुशलता, भीष्म पितामह ने कहा जैसे आज से आप हमारे कुल के गुरु बनेंगे, हमारे बच्चों की शिक्षा आप देंगे, तो उनको शिक्षा दिया। उनको यह बर था, देवताओं का यह बर था, यदि कोई व्यक्ति आपके ब्रह्म तालु को छेद कर आपके इच्छा के अनुरूप यहां से फाड़ करके यदि आपकी आत्मा को निकालेगा तभी आप मरेंगे, नहीं तो मरेंगे नहीं, ये काम संभव नहीं था किसी के। इन्होंने यह काम यदि स्वयं वो करेंगे तो होगा, ध्यानस्थ हो करके अपनी आत्मा को अपने मन को यहां से निकाल करके ब्रह्मांड में चढ़ा करके, और उसको ये होगा जब इच्छा करेंगे होगा तभी होगा, और कोई कर नहीं सकता, मरे कैसे वो। उन्होंने कहा जैसे मैं ऐसे नहीं मरूंगा, अर्जुन को उन्होंने बतलाया, अर्जुन उनसे जाकर के पूछा गुरु जी आप कैसे मरेंगे, कहा बेटा हम तुम्हारे लिए मर सकते हैं, तू हमारा बेटा है, प्रिय शिष्य है, इसलिए मैं बतला देता हूं, महाभारत युद्ध आरंभ होने पर तुम सबसे पहले हमको द्रोणाचार्य को कृपाचार्य को प्रणाम करके युद्ध करना आरंभ। और दूसरी बात, यदि कोई कह दे जैसे जुर्जिष यदि कह देंगे ये तुम्हारा पुत्र मर गया, अश्वत्थामा मर गया, और उसको कोई यदि मार दिया मैं सुन लूंगा, तो अब किसके लिए जीवित रहूंगा, तो मैं ध्यानस्थ होकर के अपने इसको अंदर यहां पर ले जाऊंगा, मैं खुद बन जाऊंगा। इसको कृष्ण जानते हैं, इसलिए युधिष्ठिर से इधर उधर फुसला करके उसे कहलवाया, और जब उन्होंने कह दिया तो उनकी बात पर विश्वास करके और फिर बैठ गए, अस्त्र शस्त्र छोड़ दिया, रस से उतर गए और वहीं पर ध्यान होकर के अपने इसको यहां पर ले आए। इतने में दुष्ट तलवार लेकर के रस से कूद पड़ा और आज हम अपने अभी पिताजी के बैर का बदला लेंगे, और बस झट उनको मारा, बस सिर कट गया। अर्जुन जी बड़े उस पर क्रोधित हुए, फिर कृष्ण ने उनको समझा बुझा करके, तो ये मरने वाले नहीं थे, कृष्ण ने चलाकी चतुराई कैसे कैसे कर करके कर्ण परशुराम जी से सब सीखा,
फल विद्या और बहुत ही महत्वाकांक्षी था, किंतु क्षत्रियों को तो सिखाएंगे नहीं, ब्राह्मण को सिखाएंगे, तो ब्राह्मण बन करके गया। कृष्ण ने उसके मारने के उद्देश्य से ही प्रेरणा करके एक वज्र कीट को ऐसे लगाया जो ऊपर से छेद करता हुआ नीचे चला गया या नीचे से छेद करके ऊपर चला गया, जंघे से रक्त निकला और उस पर परशुराम जी सिर दे करके सोए थे उसके जंघे के ऊपर में, वो रक्त लगा और रक्त लगने से उनको अच्छा ये कहाँ से आया, ऐसे देखा तो रहा, पीछे देखा तो उसका जंघा छेदा हुआ, तो कौन है, क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है, बतलाओ जल्दी, अभी अभी संपात हो, तो कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता है, ब्राह्मण इतने सहिष्णु नहीं होते, तुम जरूर क्षत्रिय है, नहीं कहेगा तो अभी हम अभी संपात करें, डर के मारे वो बोल दिया जी हाँ मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं इसका पुत्र हूं, बतलाया, अरे अच्छा हमसे छल किया, जाओ छल किया तो इसका फल यह होगा, जब इसकी जरूरत होगी युद्ध में तुम इसको भूल जाओगी, जितनी हमारी ऐसे ही याद रहेगा, किंतु युद्ध के समय काम के समय में यह भूल जाएगी। और किसी तरह से एक गाय ने उसको अभी संपात दिया, जो तुम्हारा रथ युद्ध के समय में फंस जाएगा, इसलिए रथ के युद्ध के समय में उसका चक्का उसमें चला गया और वो बाणों का संधान करना भी भूल गया, मंत्र भूल गया, और उस समय कृष्ण कहे मारो मारो, अर्जुन कहते हैं मैं नहीं मारता, कहे क्यों नहीं मारता, ये धर्म युद्ध नहीं है, कहते धर्म युद्ध इसने किया ने तुम्हारे लड़के को मारा और तुम्हारे साथ में ये युद्ध करा रहा है, तुम्हारा सब कुछ अपहरण कर लिया, द्रौपदी को नंगा किया और सब जब धर्म की दुहाई कृष्ण ने साफ किया तब इनको रोसवार बाण उठाया, ऐसा नहीं मरने वाला था ये किसी से नहीं, उस समय यदि चुक जाते तो वो नहीं होता। जयद्रथ, जयद्रथ के पिता थे, उन्होंने तपस्या की घोर, इसको पृथ्वी में कोई भी मार न सके, कोई भी नहीं मार सके, तो शंकर जी की आराधना किया, शंकर जी ने कहा कोई भी इसको नहीं मार सकता, किंतु एक बात है इसको कोई ऐसा मारे, मारने के बाद इसका सिर तुम्हारे हाथों में आएगा और तुम देखेगा, और देख करके तुम यदि इसको फिर से इसके सिर पर लगा दोगे तो वो जीवित हो जाएगा, यदि फेंकेगा नहीं तो, और यदि तुमने इसको फेंक दिया अवज्ञा करके तो वो मर जाएगा, साथ साथ में दोनों मरेंगे। तो उसने पर ये बात हुई, अभिमन्यु मारा गया, प्रधान भूमिका इसी की थी, इसलिए कृष्ण और अर्जुन ने कोप किया था, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की जयद्रथ को मैं मारूंगा, कल जरूर मारूंगा शाम तक। लड़ाई होने लगी, द्रोणाचार्य जी ने ऐसी किलेबंदी की ये शाम तक उसको देख न सके, एकदम भीतर में उसको कर दिया और ऐसा कोई देह की बनाया जिसमें कोई प्रवेश न कर सके, उसमें कोई प्रवेश नहीं किया। शाम अब होने आई, कृष्ण ने देखा जे अर्जुन तब मरेगा, उन्होंने अपने चक्र से सूर्यास्त होने के पहले ही सूर्य को ढक दिया, अर्जुन खिन्न होकर के युद्ध छोड़ करके रथ में और उतरे और आग में जल मरेंगे, चिता बनाने लग गए सब लोग, जब चिता तो सब लोग देखने के लिए आज आज मर रहा है अर्जुन, दुर्योधन ने कहा उसको, वो उनका भग्नीपति लगता था बहनोई, चलिए अब देखें हम सब लोगों मर रहा है खुशी के साथ में देखें, वो नहीं आ रहा तभी सब लोगों ने मिलकर के उसको वहां पर लाया जहां पर चिता में प्रवेश होने के लिए अर्जुन तैयार थे, चिता में आग लगा दी गई, आग धधकने लगी, अब कूदने वाले थे, कृष्ण ने कहा वीरों का ये कर्तव्य है कि धनुष बाण के साथ में आग में कूदे, इसलिए धनुष बाण लेकर के मरो, ऐसे नहीं। तो अर्जुन ने धनुष बाण उनसे ले लिया और इतने कहा अर्जुन से, अभी दिन है, देखो अभी दिन है, जल्दी से मारो। उसके सामने एकदम आ गया ना, तो ऊपर में देखा तो सचमुच में चक्रमा से हट गया, अभी दिन अभी छिपा नहीं था। बस ये सब लोगों ने कहा, अनारंभ किया कि अधर्म युद्ध है, अधर्म युद्ध है, विशेष करके जयद्रथ। वहां पर द्रोणाचार्य, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन सब लोग थे, कोई भी रक्षा नहीं कर सके। बस उठाया और ऐसा मारा कि वो सिर लेकर के, अब संध्या के समय में वो अन्ही कर रहे थे, सूर्य को जल दे रहे थे, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, और उसी आंख बंद करके सूर्य का ध्यान करके, और उसी समय में वो सिर पहुंचा उनके हाथ, और सूर्याय नमः ऐसे किया और उसी समय पार पानी में गिर गया। अरे भाई भारी चीज क्या पड़ी, देखा तो अरे ये तो मेरे बेटे का सिर है। तब तक वहां साथ साथ में उसका भी सिर उड़ गया और उसका भी सिर उड़ गया। इसलिए वो भी बच गए और वो मारा गया। ये सब मरने वाले नहीं थे, अतिरथी भी मरने वाले नहीं थे, कृपाचार्य अमर है और अश्वत्थामा अमर है। वो इसके बाद में ब्रह्मा या क्या क्या होने वाला है,
ब्रह्मा
नहीं क्या,
इंद्र
या कुछ
इंद्र,
तो वो मरने वाला नहीं है, तो वो लोग मरेंगे नहीं युद्ध में। इसलिए कहते हैं ये तिमिंगिल के समान है, किंतु दुरत्तयम, उनका मरना बड़ा ही कठिन है। तो अभी उनके पितामह लोगों ने कौरव सैन्य सागर को, अथा सागर को कृता तरण तर गए, कृत्वा तरण ने समुद्र को तर गए। कैसे तर गए, बस पदम स्म, ऐसे महायुद्ध को, महासमर को बछड़े के अखूर का पानी बना करके अनायास ही तर गए। स्म जत जत पल्लवा, कृष्ण के चरण कमलों को ही इन्होंने तरणी बनाया और अनायास ही तर गए। इसलिए मैं भी अभी तरने वाला हूं इन्हीं के नाम के बल पर। जन्म मृत्यु का ये अथा संसार है, भव सागर है, और ऋषि ने हमको मरने का भी संपात दिया है, मरूंगा, सांप काटेगा मरे, किंतु क्या मैं उस कृष्ण के चरण कमलों को, जिसको हमारे पितामह लोग आश्रय करके इतने बड़े सागर को तर गए, मैं नहीं तर सकता इसको, इसलिए मैं नहीं सोऊंगा, मैं इससे व्यर्त नहीं हूंगा। आप उनकी कथाएं सुनाइए, मैं भी उसी को तरणी बना करके, नौका बना करके, ये भव सागर को ही मैं, वो लोग तो तरे से महासमर युद्ध को, और हम क्या करेंगे, और इसके बाद में क्या होगा, वो तरणी हम छोड़ करके जाएंगे। जो लोग इसका आश्रय करेंगे भविष्यत में, विश्व के सभी जीव जंतु जितने भी लोग हैं, सब लोग उसी को आश्रय करके भव सागर से तोड़ष्ट विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोपचुक्षे कुक्षिं गत आप्तचक्रो मातुश्चमीज शरणं गताय। मुझे याद आ रही है, स्मरण हो रहा है, जब मैं माता के गर्भ में था, जब दुर्योधन मर रहा था और मरने से बड़ा दुखी था, एक गदा लेकर के कौओं और चीलों और सियार इत्यादियों से अपनी रक्षा कर रहा था। शाम हो गई, गीदड़ आने लगे, सब मरे हुए शवों को खाने लगे, रक्तपान कर रहे हैं। उस समय मैं अपनी रक्षा कर रहा था, उसी समय में कृपाचार्य और ये अश्वत्थामा और कृतवर्मा सेनापति, तीनों इसके पास में आए कुरुक्षेत्र में। उसमें आने पर इनकी दशा देखकर के रोने लगे। इसने कहा ये आपने हमको सेनापति नहीं बनाया, यदि बनाया होता तो आज मैं जो काम भीष्म पितामह जी हमारे पिताजी द्रोण कर्ण और कृपाचार्य नहीं कर सके मैं वो कार्य कर लेता, जरूर मैं इनको पांडवों का विनाश कर देता। आज आप भी अभी भी हमको बना दीजिए सेनापति, तो तू क्या करेगा? तो पांडवों समेत उसके वंश को सबको ध्वंस कर, वंश को मत ध्वंस करना, पांडवों का विनाश कर। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं बस अपने खून से लेकर और उसको तिलक कर दिया, जाओ अभी सेनापति बना। ठीक, बस उनको लेकर के वो गया। जाने के बाद में तपस्या की, आराधना की शंकर की। शंकर जी तो रौद्र रूप है, महाभारत का युद्ध होना समाप्त होना है, पृथ्वी का भार धारण करना है। बस उसकी तपस्या से बोले जी क्या चाहते हो? तो मैं ऐसा संहार कर सकूं सेनाओं का, अजय मस्त। बस उससे बलवान होकर के वो आया, हनुमान जी उसकी रक्षा कर रहे थे अपनी पूंछ से समस्त सारी सेनाओं को, और कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के दूसरी जगह कहीं चले गए थे विश्राम के लिए, वो लौटे नहीं, और सारी सेना रात में सो रही, हनुमान जी पारा दे रहे। बस ये किसी का वेश बना करके आया, और हनुमान जी को, हनुमान जी कौन है? शंकर के ही, उनको भी प्रसन्न कर लिया। अब भीतर में प्रवेश करके सबसे पहले धृष्टुम्न का वध किया, जो उसको पिता को मारा था, बकरे की तरह उसको मारा, और सब बड़े बड़े वीरों को सोते समय में शंकर जी के आवेश में उसमें प्रवेश कर गए ध्वंसात्मक वो, और सबको बड़ी बुरी तरह से मारा, और इनको पारा नियुक्त किया जो कोई भी व्यक्ति इसमें से बाहर ना निकलने दिया। ये दोनों लोग पारा देने लगे, कृतवर्मा और कृपाचार्य। अब पशुओं की तरफ मैं सबको मारा, यहां तक कि इनके लड़के पांचों सो रहे थे द्रौपदी के, अर्जुन युधिष्ठिर अर्जुन भी इनके पुत्र से अभी 12-14 वर्ष के अभी थे, किंतु वीर बड़े थे, देखने में वैसे ही सब लोग सो रहे थे। उनको मार करके धृष्टद्युम्न को अपने पैरों से ऐसे गले में जैसे बकरे को वध करते हैं मार काट करके अब इनको भी काट दिया, इनका शिर उठा करके अपनी चद्दर में बांध करके और शिविर में आग लगा दी, जो था वो भी मारे गए। इसके बाद में बड़ा हृदय द्रावक वहां पर हुआ, इसके बाद में गया दुर्योधन के, कहते देखो मैंने पांचों पांडवों का वध किया, बड़ा खुश हुआ, कहा जी अब मेरे सुख से प्राण निकल जाएंगे, लाओ दिखाओ तो भीम का जरा मस्तक तो दो। भीम के लड़के का मस्तक वैसा ही बड़ा था, उसको हाथ में लिया, कहा जैसे इसको ऐसे चकनाचूर जैसा चूर्ण कर दूं, हाथ में लेकर के ज्यों किया तो ये कांकड़ खरबूजे की भांति वो बिना प्रयास का ही वो, अरे ये तूने क्या किया? भीम का ये कदापि नहीं हो सकता, जो भीम का नहीं है तो ये भी युधिष्ठिर अर्जुन के ये नहीं हुए, तुमने क्या किया? उनके लड़कों को मारा, हमारा वंश का ही सत्यानाश कर दिया, हमें कोई पानी, जाओ जाओ दूसरा होता तो मैं अभी संपात देता, अभी जाओ तुम्हारा मुख नहीं दर्शन कर, और हाय हाय करते हुए अपने प्राणों को छोड़ दिया। अब उसको डर लगा जिसे तो ये मरे नहीं है, जरूर हमको मारेंगे। सबे राघुवाद इधर कुछ स्त्रियां बची थी शिविर में, बस वो दाड़ मार करके रोहिए, कृष्ण अर्जुन सब जब आए तो देखा जा रही भयंकर दशा, अर्जुन जी को बड़ा भारी कूद, मैं जरूर उसको मारूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। इसके बाद में भीम और वो रथ पर चले उसको ढूंढने के लिए, और वो वहां से भागा, ये हमको तो खोद करके मारेंगे। जब थोड़ी देर के बाद में देखा कि ये हमारी पीछा कर रहे हैं, तब वो ब्रह्मास्त्र दिया, द्रोणाचार्य जी इसको ब्रह्मास्त्र नहीं सिखा रहे थे और ये जिद पर लगा था, अर्जुन को बड़े प्रेम से सिखाया था। किस लिए? अर्जुन सहिष्णु है, देश काल पात्र दे करके विचार करेंगे और रथ को उसको लौटा भी सकते हैं, इतनी सामर्थ्य इसमें सामर्थ्य नहीं है, मार तो देगा किंतु लौटा नहीं, इसको सिखाया नहीं ये विद्या, अधूरी रखती। उसने कहा अच्छा, उसी समय में अर्जुन ने उसे पकड़ा, भीम अभी नहीं किया, भीम और ये दौड़ रहे थे, भीम रथ से कूद गए, जो रथ इतना जल्दी से तेजी नहीं चल रहा इसलिए दौड़ करके चले पैदल और उसको पकड़ा, अर्जुन भी वहां पर पकड़े और वहां जाकर आगे एकदम आग लगा दी, इसलिए भाग नहीं सका, पकड़ लिया, पकड़ करके रथ में बांध करके पशुओं की तरफ में मारा नहीं ले आए, जहां पर युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी थी। अर्जुन ने कहा जी मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, अब बाकी जो है वो पूरी करूंगा, आदेश दीजिए महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी, द्रौपदी के लिए ऐसा किया है, इस पशु को मैं हत्या कर दूं, ये बच्चों को इस प्रकार से हत्या की, बार बार करने पर द्रौपदी कुछ नहीं कर रही है, युधिष्ठिर महाराज भी कुछ नहीं कर रहे, भीम कहते हैं मारो मारो, कृष्ण ने कहा जी मारो, कृष्ण ने भी कहा मारो, द्रौपदी नहीं बोली, बार बार पूछने के बाद में तो कृष्ण ने कहा जी अच्छा द्रौपदी से तो पूछ लो, तो द्रौपदी से पूछा तो उसने कहा जी इसको छोड़ दो, कहते क्यों छोड़ दें, इसने तुम्हारे पांचों पुत्रों का वध किया, तो इसके वध करने से हमारे लड़के आ जाएंगे तब तो फिर उसका वध करो, नहीं तो छोड़ दो, नहीं तो जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हैं इसकी मैया भी इसके लिए रो रही, पिता तो मर गए हैं और मैया केवल है, इसलिए गुरुपुत्र जैसा भी है पशु है जैसा भी। कृष्ण अर्जुन ने कृष्ण की तरफ में देखा जैसे मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, मैंने प्रतिज्ञा इसका वध करूंगा, भीम करें जो मारो इसको और ये करें जो मत मारो, क्या करें? तो उन्होंने कहा जैसे देखो ब्राह्मणों का वध तो नहीं किया जाए, तो ये ब्राह्मण नहीं है
ब्रह्म बंधु
है, तो इसको भी वध मत करो, इसका अपमान करके छोड़ दो, इसके सिर में मणि है उसको निकाल दो और मोतदारी वैसे रख करके और इसको छोड़ो, इसके बाद में उसको काट करके उसका सिर और मणि निकाल लिया और उसका सिर मुंडन करके जब छोड़ दिया बहुत अपमानित हुआ, जो इसे तो मरना ही अच्छा था, अच्छा तो ठीक है मेरा अपमान किया तो मैं इसका बदला लूं, बस थोड़ी देर जाकर के वहीं से ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जैसे तुम्हारे अब वंश को ही मैं ध्वंस करता हूं, उस समय मैं अभिमन्यु क्या पुत्र ये परीक्षित महाराज जी गर्भ में थे, अभी गर्भ भी पुष्ट नहीं हुआ और उस समय में संधान किया और उस समय में जब छोड़ा तब वो पुत्रा एकदम दौड़ी छटपट आ गई, आग लग गई, कृष्ण रक्षा कीजिए कृष्ण रक्षा कीजिए, और कुंती महारानी पीछे से दौड़िए कृष्ण इसकी रक्षा करें, और वो थी द्रौपदी, बस कृष्ण साथ ही साथ में आए, उसी को कह रहे हैं द्रोणास्त्र विप्लुष्ट एकदम, जब उसने संधान किया ब्रह्मास्त्र का, बदंगम संधान बीजम, मेरा जो अंग है मैं हूं वो कौन हूं, संतान बीजम, पांडवों का संतान भी कौरवों का भी दोनों का, कुरु पांडवानं, कौरव पांडव में बस यही केवल एक बच रहे थे, ये यदि मर जाते तो सब समाप्त हो जाता, जो बीच स्वरूप मेहता जुगोप कुक्षिंग गता आत्म चत्रो, हमारी मैया के कुक्षी में प्रवेश करके गर्भ में, और जुगोप विशेष रूप से रक्षा की, कैसे आत चक्रो, आत माने हाथ, हाथ में चक्र दिया और क्या किया, हमारी तो रक्षा की साथ साथ में मातुश्च जुगोप, माता की भी रक्षा की, यदि मैं मर जाता उस समय में तो मैया भी उसे मर जाती, या संतान यदि मरा हुआ होता और मैया देखते तो भी मर जाती, इसलिए उस ब्रह्मास्त्र के द्वारा मैया और हमारा दोनों का मरना निश्चित था। इन्होंने रक्षा की। जो जिन्होंने ऐसा किया वो कौन है? वो कृष्ण है, शरणम गताया, मैं उनके अब शरण होगा। यह कहकर के कहा कि प्रभु अब विलंब मत कीजिए, अब उन्हीं की जो कथाएं आप हमको अब शरण, वो कथाएं ही हमारी रक्षा करेंगी। जैसे चक्र ने किया रक्षा, ये कथाएं क्या करेगी? यही हमारी रक्षा की। ऐसा कह करके फिर हरि कथा के लिए बस आज ही कर वंछा कल्पतरु नगर संकीर्तन। आप लोग सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ में, बंधुओं के साथ में, सखियों सहेलियों के साथ में नगर संकीर्तन में शामिल हो और सबको ये सूचना विज्ञान तस्याखिल देह भाजा अंतर बही पुरुष अकाल रूपी प्रयच्छ तो मृत्यु मृत्यु उत अमृतं च माया मनुष्य बदस्व विद्वत। परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी की अभिनंदना करते हुए हरि कथा और अग्रसर होने के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे। विशेष करके उन्होंने कहा जो मैं कौरव और पांडवों का बीज था, संतानों का बीज, विशेष करके आप हमारे कृष्ण हमारे कुलादि देवता हैं, कुलादि देवता भी नहीं और हमारी रक्षा करने वाले हैं पेट में और साथ साथ में मैया की भी हमारी रक्षा करने वाले हैं। उन कृष्ण के संबंध में कुछ हरि कथा आप वर्णन की। जो उन्होंने कहा कल जो हमने बतलाया, हम लोगों के पितामह लोग, मेरे पितामह लोग जो युधिष्ठिर दत्त भीम अर्जुन इत्यादि समर में देवताओं को भी जय करने वाले, अजर अमर होने वाले देवव्रत भीष्म पितामह द्रोण कर्ण जयद्रथ अश्वत्थामा इत्यादि जो, उन सबको भी परास्त करके और समर में जयी बनाया इनको हमारे पितामहों को। केवल यही नहीं, द्रोणी के अस्त्र से हमारा वंशी ध्वंस हो चुका था, आपने ही हमारी रक्षा की, इसलिए उनकी कथा का कुछ वर्णन आप कीजिए। बिरजानी तस्य अखिल देह भाज अंतर बही पुरुष काल रूप यक्ष मृत्यु उत अमृतंच माया मनुष्य बदस्व विद्वन। हे विद्वन, विद्वन माने आप कृष्ण के लीलाओं के जानने वाले शिरोमणियों में से एक हैं। तत्व वेद रसी और भागवत के अर्थ को जानने वाले, लीला कथाओं के अर्थ के आप जानने वाले हैं, इसलिए आप वर्णन करें। क्या वर्णन करें? बिरजानी माया मनुष्य, माया से जो मनुष्य बने हैं या माइक लोग उनको मनुष्य समझते हैं, उनका अर्थ हम पीछे बतलाएंगे। अखिल देशियों के अंतर और बाहर में पुरुष और काल के रूप में विराजमान हैं, उनके वीर्य की महिमा की का आप जानने वाले हैं, इसलिए आप इसका वर्णन करें। जो पुरुष रूप में अमृत और काल के रूप में अमृत प्रदान, पुरुष के रूप में अमृत प्रदान करने वाले। अब इसकी व्याख्या सनातन गोस्वामी, जी गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने की है, हम लोग इस पर विचार करें। इस श्लोक में बहुत ही सुंदर सिद्धांत इसमें निहित है। क्यों कह रहे हैं इसका तात्पर्य, इसमें ये बतलाएंगे। पहली बात, उन्होंने पहले बतलाया है एक श्लोक में, निवृत्त तरसे उपगीयमाना भौषधा सोत्री मनोधिरामा कौ उत्तम श्लोक गुलानुवादात विरचित इना पशु। पशु घातियों के लिए, आत्मघातियों के अतिरिक्त मुक्त महापुरुष लोग, भक्त, एकांतिक भक्त लोग, रसिक लोग, जीवन मुक्त लोग, मुमुक्षु लोग, भक्ति की इच्छा करने वाले लोग, विषयी लोग, यहां तक कि ज्ञानी और योगी लोग भी हरि कथा के को सुनते हैं। ज्ञानियों को सहज ही भक्ति के द्वारा मुक्ति मिल जाती है, इसलिए भगवान की कथाओं को बड़े प्रेम से सुनते हैं। जो कोटि कोटि जन्मों में उनका होता मुक्ति होती, वो हरि कथा के श्रवण से बहुत ही सिद्ध हो जाता है। जो भी लोगों का ये जो सिद्धि होती है वो हरि कथा के माध्यम से बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए क्यों नहीं सुनेंगे। विषयी लोग जो विषयों के संग्रह से जो सुख नहीं पाते हैं हरि कथा के द्वारा, उनका वह विषयों का सुख भी अनायास ही प्राप्त हो जाता है। एक तरह से सभी लोगों को इसको सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत में हरिनाम के लिए भी ऐसा कहा गया है, हरिनाम के लिए यह बतलाया गया है, एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम अकुतो भयम जोगी नाम निर्णतम हरे नामानुकूल। जैसे नाम बतलाया गया, एतत् निर्विद्यमानानां, जो संसार से निर्भेद प्राप्त एकांतिक भक्त लोग हैं, निर्विद्यमानानां इच्छताम, इच्छा करने वाले, क्या विषयों की इच्छा करने वाले, अथवा प्रेमा भक्ति की इच्छा करने वाले भी हो सकता है, कोई चीज की इच्छा करने वाले हैं, निर्विद्यमानानां इच्छताम अकुतो भयम, जो सर्वत्र अकुत भय रहना चाहते हैं, कहीं भी जिनको भय नहीं, जन्म मृत्यु से पार कर जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए, योगियों के लिए, सब लोगों के लिए, संसार में सुख और शांति यदि कोई चाहता है तो भी उनके लिए भी हरिनाम और हरि कथा जरूरी है। इसके द्वारा जैसे सुख और शांति मिलेगी और किसी भी उपाय से नहीं मिलेगी, इसलिए सबके लिए ये, इसलिए मनुष्य मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए पुंसा, ये कल हमने बतलाया। वही कह रहे हैं हरि कथा सबके लिए उचित है, किंतु सुखदेव स्वामी जी कृपा करके नौवें स्कंद की कथा बोला है वहां तक तो ठीक है, सबके लिए है, किंतु आगे की कथा जो आरंभ करेंगे, जो इनको सुनना अभीष्ट है, बाकी है, ये जो अब दशम स्कंद के लिए सुनने के लिए जो प्रश्न करते हैं लीला की, कृष्ण की लीला कथाओं, ये सबके लिए श्रवण योग्य नहीं, बहुत ही सुदुर्लभ है, इसमें सबका अधिकार नहीं। इसलिए यहां पर सोच रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी इसलिए चुप हो गए हों, ये अनाधिकारी ज्ञानी गर्मी योगी तपस्वी सब भरे पड़े हैं, इनमें कृष्ण की जन्मलीला ही।